ओम शांति ओम शांति। समय बड़ा बलवान है। संसार में समय के लिए बहुत बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन जो व्यक्ति समय का वैल्यू नहीं करता वो अपनी जिंदगी का भी वैल्यू नहीं कर सकता। सो टाइम इज लाइफ। वैसे जीवन भी क्या है? जीवन भी तो समय ही है ना। हर बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन पर तो समय ही गिना जाता है, कितने साल के हो गए। और जो व्यक्ति बीमार है उनसे भी यही पूछा जाता है डॉक्टर से, भाई अभी इनके पास कितना समय है। तो व्यक्ति जब से संसार में आता है और इस संसार से विदा लेता है, इसके बीच सिर्फ उसके पास समय है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 20 साल, जो भी समय, तो समय है। सो लाइफ इज टाइम। हर श्वास जो हम लेते हैं एक क्षण समय। तो अगर हम अपने जीवन को महत्व देते हैं, या यूं कहें जो व्यक्ति अपने जीवन को महत्व देता है वो समय को भी महत्व देगा। जो समय को महत्व देगा वो अपनी जिंदगी को भी महत्व देगा। जो बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं वो कहते हैं टाइम इज मनी। अब डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, खास करके साइकोलॉजिस्ट, कहते एक घंटे के लिए आपको इतना पैसा देना है। तो समय जीवन है। अब बात यह है, जब से सृष्टि आरंभ हुई, सृष्टि के अंत तक भी समय ही है। जो हम महीना देखते हैं, साल देखते हैं, हफ्ता देखते हैं, इट्स ऑल टाइम। काल का दो अर्थ है, एक है काल जो समय दिखाता, एक है काल जो समय समाप्त हो जाता, उसको भी काल ही कहता है ना, भाई इनका काल हो गया, अर्थात उनका समय समाप्त हुआ। और जीवन में हर कर्म के साथ समय जुड़ा हुआ है, खासकर जब हम अच्छे कार्य करते हैं, मुहूर्त देखते हैं। कौन कौन मुहूर्त देख के काम करता है? अच्छा मुहूर्त देख के, अच्छा समय देख के कार्य करता है ना। उद्घाटन है, जैसे घर प्रवेश करते हैं या कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं, समय देख के करते हैं। तो समय इंसान के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। एंड व्हाट इज टाइम, समय क्या है? वैसे आप सभी धर्म से संबंध रखने वाले हैं और बचपन से हम सभी सुन के आए, खास करके भारतवासी हैं हम सब, हमको ये भगवान के बारे में, युगों के बारे में बताया जाता है कि हम कोई भी भागवत पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, या कोई भी इस तरह के अपने उपनिषद पढ़ते हैं, कोई भी मैथोलॉजिकल स्टोरीज है पढ़ते हैं, तो उसमें समय का जिक्र अवश्य करते हैं। ये जो कुछ भी हुआ था वो किस युग में हुआ था, किस समय में हुआ था, हाँ जी। तो पूरी जो सृष्टि है वो समय है। सतयुग से लेकर के, आवाज सुनाई नहीं दे रहा? आवाज थोड़ा सा बढ़ाया जाए, क्या है बरसात तेज है ना, इसीलिए अभी बेटर। ओके सुनाई दे रहा, थोड़ा सा आगे आ जाए, जो पीछे पीछे बैठे हैं ये आगे आ जाएंगे, थोड़ा बेहतर होगा। आ जाए आ जाए, थोड़े से लोग हैं, इफ यू वांट टू कम। थैंक यू। आजकल तो कोई घड़ी नहीं पहनते हैं, पर वैसे घड़ी जब पहनते हैं, क्यों पहनते हैं घड़ी? कौन कौन पहनता है घड़ी? पहनते थे या पहनता है ना? क्यों पहनते भाई, क्यों पहनते? समय देखने के लिए। अच्छा, ये जो घड़ी है वो 1 से 12 तक है। अब हमने कभी ये नहीं सोचा कि 1 से 12 तक का क्या हिसाब है, यू नो। हाँ, फिर कहते हैं 4 प्रहर है, 8 प्रहर है, 1 प्रहर में 3 घंटे हैं, इसलिए 12 है। पर ये किसने डिसाइड किया, कौन ये निर्णय किया कि 12 होना चाहिए, 8 प्रहर होना चाहिए? कभी हमारे मस्तिष्क में ये सवाल नहीं उठा। अच्छा, हर घंटे में 60 मिनट होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होंगे, ये क्यों? 50 क्यों नहीं, 60 क्यों, 100 क्यों नहीं, 60 क्यों? 1 हफ्ते में 7 दिन होगा, 7 क्यों? 5 हो, 10 हो, पर इवन नंबर होवे ना, हाँ जी। महीने में 30 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 31 क्यों? 25 हो, 50 हो, 75 हो, हाँ जी। और 12 महीना क्यों? 10 महीना हो, 15 महीना हो। तो हमारे हमारे जो दिमाग में कभी ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो भी समय का दिन है, घंटे हैं, मिनट्स है, वो निश्चित है। क्यों? कि सारी सृष्टि एक चक्र है, लाइफ भी एक चक्र है, जीवन भी एक चक्र है, युग भी चक्र है, इसलिए इसको सृष्टि का चक्र कहते हैं। इट्स अ लाइफ साइकिल, अर्थात साइकिल चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी चक्र का अंत नहीं होता, ये घूमता रहता, इसका ना आदि ना अंत। कि समय कभी ऐसा नहीं कि यहां शुरू हो यहां खत्म हो, ना। जीवन कभी ऐसा नहीं कि यहां शुरू हो यहां खत्म हो, ये चक्र है। क्यों चक्र है? क्योंकि इस समय के साथ इंसान कर्म करता है, कर्म करता है तो कर्म का फल जुड़ा हुआ है, और कर्म का फल जो है वो जरूरी नहीं है कि अब का किया हुआ कर्म आपको अभी इसका फल मिले, ना। जैसे बीज बोते हैं ना, कुछ ऐसे बीज है कि अभी का अभी निकलता है, कुछ बीज है 6 महीने पश्चात निकलेगा इसका फल। बीज बेशक अब बोया पर इसका फल 6 महीना, साल के बाद निकलेगा। तो बीज बेशक अब बोया पर जरूरी नहीं है इसका फल अब मिले। इसी तरह इंसान का जो कर्म है उसका भी फल है, और फल निश्चित है। जब कर्म निश्चित है, कर्म का फल भी निश्चित है, हाँ या ना? श्री राम जी, रामचंद्र जी कभी अपने कर्मों के फल से निकल नहीं पा सके। श्री कृष्ण जी अपने कर्मों का फल पाया। कितने भी देवी देवताओं का जिक्र है, सभी अपने कर्मों के फल पाए, चाहे देवताएं हो चाहे दानव हो, हर जो इस शरीर लेता है, जिसको जन्म कहते हैं, और मृत्यु काल, इस बीच में किया हुआ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे अब भोगे चाहे बाद में। है जी, हाँ या ना? कोई आज तक बच सका? अपने कर्मों से बच सका? कोई अपने कर्मों के फल से बच सका? जब कर्म और कर्मों का फल जुड़ा है तो इसका समय निश्चित है, तो ये चक्र घूमता, अभी के किया हुआ कर्म इसका फल, फिर किया कर्म इसका फल, कभी अभी भी मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, पर मिलेगा अवश्य। तो इस तरह इंसान का जो है वो चक्र घूमता रहता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, व्यक्ति के कर्म के साथ इच्छाएं जुड़ी हुई है। इच्छा है तब तो कर्म करता है, और कर्म और इच्छाओं के साथ साथ उनके कर्म करने की नियत जुड़ी हुई है। किस उद्देश्य से वो कर्म इंसान कर रहा है, उस उद्देश्य के अनुसार उसको कर्म का फल मिलेगा। तो ये फल और कर्म और इसका फल और कर्म और इसका चक्र घूमता रहता है। इस तरह है, ये जो नारियल का है ना, नारियल का पेड़ है ना, आप एक बार डाल देंगे, सालों साल इसका फल निकलता रहता है। हाँ? कुछ है जो हर साल डालना पड़ता है, पर कुछ है एक बार डाल दो फिर वो निकलता जाए, एक बीज का अनेकों अनेक फल निकलता चला जाता है। तो चक्र, तो इंसान का भी कर्म का चक्र है, और ये एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ है। जो नक्षत्र हम देखते हैं ना, समय भी इससे, क्योंकि समय शब्द इस संसार से जुड़ा हुआ है। आपको इससे पूर्व तीन लोक की बात कही होगी, सुना ना? ये स्थूल है, फिर सूक्ष्म और मूल वतन, जिसको निर्वाण धाम कहते, शांति धाम कहते, मुक्ति धाम कहते, वहां समय नहीं है। समय तब है जब आत्मा इस शरीर को धारण कर इस सृष्टि मंच पर आती है, क्योंकि इस सृष्टि में आत्मा अपने कर्म करने आती है, एक्शन, और जब एक्शन करती है, कर्म करती है, वो आत्मा अविनाशी है, तो आत्माओं के कर्म अविनाशी हैं, इसका फल भी अविनाशी है। हाँ जी, इसलिए इसको ड्रामा कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक्टर जो है वो स्क्रिप्ट उसको मिलता है, स्टोरी मिलती है, कहानी मिलती है, वो कहानी को वो दिखाता है, एक्ट करके दिखाता है, फिर उसको कैमरा में शूट किया जाता है, है ना? फिर वो प्रोजेक्ट किया जाता है, ये कहानी है, 2 घंटा 3 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, वो कहानी दिखाते हैं, वो स्टोरी। एक बार वो शूट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फिर जितनी भी बार मर्जी आप देखते जाओ, फिर वही आएगा ना। आपने लाल साड़ी पहनी है तो सेकंड सीन में आप बैठे हैं लाल साड़ी पहन के, तो अभी 4 साल के बाद भी अगर मैं वो फिल्म देखूंगी तो सेकंड सीन में लाल साड़ी पहन के बैठे होंगे, हाँ जी। और तीसरे सीन में आप चल रहे हैं, आपके सामने से गाय आ गई, तो फिर आप 5 साल के बाद भी देखेंगे, फिर वो आप चल रहे हैं, आपके सामने से गाय आएगी। ऐसा नहीं है मैं 4 साल के बाद देखो या 5-7 बार देखने के बाद गाय के बजाय कुत्ता आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, है ना? क्योंकि ये रिकॉर्ड है जो शूट हो गया। इसीलिए बाबा कहते हैं, कर्म करने से पहले सोच समझ कर करो। यहां तक भी सोचने से भी पहले ये सोचो ये जरूरी है भी कि नहीं, क्योंकि जो मन में सोच उत्पन्न होते हैं वही कर्म का रूपांतर होता है। अगर मेरे मन में मस्तिष्क में वो है ही नहीं कार्य करने का, अभी ये चीज पड़ी है, अगर मेरे मन में सोच आया ये चोरी करना है तो मैं चोरी करूंगी ना, वो संकल्प ही नहीं है, वो सोच ही नहीं है चोरी का, तो बेशक चीज पड़ी है तो मेरे मन में आया ही नहीं बात। तो हर कर्म का बीज है सोच। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचने से भी पूर्व सोचो आवश्यक भी है कि नहीं, क्योंकि एक बार वो सोच कर्म में परिवर्तित हो जाता है फिर उसके फल से कोई नहीं आपको बचा सकेगा। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। सारी दुनिया मिलकर के भी आपका भाग्य को छीनना चाहे और अपने कर्म से अपने भाग्य बनाया हो, कुछ कोई आपका बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे कर्मों का ही तो फल मेरे सामने है ना, है जी। हमें ये डर नहीं कभी होना चाहिए वो मेरे से छीन न ले, मेरे से गुम ना हो जाए, मेरे से चला ना जाए। कोई चीज हमसे छीन ही नहीं सकते। और ये ड्रामा में, ये कर्म में ये बना हुआ है, ये चक्र है, कर्म का फल मुझे मिलता चला जा रहा है। इस पूरे सृष्टि में चार युग है, जो हमें पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जीवन के भी चार अवस्थाएं हैं, है ना, बाल्य अवस्था, फिर युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, जिसको चार आश्रम कहते हैं, हैं जी। और ऋतु भी चार है, और दिन में देखिए सवेरे हैं, दोपहर है, शाम है, रात है, वो भी तो चार हो गया ना एक दिन में, चार चार अवस्थाओं से गुजरता है। युग भी चार है। और जैसे इस संसार में आत्मा शरीर लेके आती हैं तो काल निश्चित है, काल निश्चित है ना, समय निश्चित है, इसलिए घड़ी है। वहां कोई घड़ी नहीं है, समय नहीं है, वो कालातीत स्थान है। पर इस स्थान में, इस सृष्टि में, स्थूल लोक में समय निर्धारित है, इतना ही समय है, इसलिए इसको कहते हैं हद की दुनिया। ये जो है ये हद की दुनिया है, सब हद है, इतना ही है, इतना ही है। यहां तक भी संबंध भी, प्यार भी इतना ही है। इसलिए आत्मा किसी बात से संतुष्टि नहीं होती ना, बहुत सारे संबंध बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर फिर भी अंदर से संतुष्टि रही, क्योंकि आत्मा तो उस लोक की है, पर इस लोक में आत्मा शरीर लेके आई है, और आत्मा इस संसार के हद की दुनिया से सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है, जो कि हद है। इसलिए कितना भी सुख हो, संबंध आप 100 बना के रखें, संतुष्टि नहीं मिल सकती, है ना, क्योंकि हद की दुनिया है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पर काल निश्चित है, समय निश्चित है, इसलिए युग की जो बात होती है वो इस संसार के, इस स्थूल दुनिया में युग है, क्योंकि शरीर यहां है, नाटक यहां है। नाटक माना कर्म, नाटक माना कर्म, हम अपनी ही स्टोरी लिखते हैं और अपनी ही लिखी हुई कहानी हम कर्म करके इसका फल भोगते हैं। यह है ड्रामा, है ना। ड्रामा में क्या होती है, एक स्टोरी होती है, एक एक्टर होता है, और एक्टर माना जो वो स्टोरी को कर्म में परिवर्तित करके दिखाता है। हम भी यही कर रहे हैं, हम खुद अपनी स्टोरी लिखते हैं और हम खुद अपना कर्म करते हैं, इसका फल हम भुगतते हैं। तो ये चक्र चलता चला जा रहा है। अच्छा कर्म करें, अच्छे गुण हो तो हम सतयुग में चले जाएंगे, हम ऐसे कर्म करेंगे तो कलयुग में आ जाते हैं जो कि नरक है। और क्योंकि ये सृष्टि का चक्र है जिसमें चार युग है और ये सृष्टि यहाँ है, युग यहाँ है, ये समय निश्चित है, तो ये सृष्टि का चक्र एक बार घूमने में कितना समय लगता है? जैसे घड़ी एक बार घूमने में 60 सेकंड्स लगते हैं, हाँ जी, पूरा चक्र होने में 24 घंटे कहते हैं, 24 आवर्स, है ना। इसी तरह ये चार युग 5000 साल में पूरा होता है, क्योंकि हर युग जो है वो इक्वली डिवाइड किया गया है। जैसे सतयुग है वो 1250, त्रेता 1250, द्वापर 1250 और कलयुग 1250। तो 1250 इंटू फोर, या मैथ्स में कौन माहिर है, 1250 इंटू चार कितना हुआ, 5000। तो एक चक्र घूमने में 5000 साल, फिर घूमेगा, एंड इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी, गोज ऑन एंड ऑन। इसीलिए बहुत अच्छी बात, हर शुभ कार्य में स्वस्तिक लगाते हैं, दिवाली पे स्वस्तिक लगाते हैं, गृह प्रवेश में स्वस्तिक लगाते हैं। इसमें चार खाने हैं, चार खाने हैं ना स्वस्तिक करते हैं, वो चार युग की निशानी है। और इसको स्वस्तिक क्यों कहते हैं, इन चारों ही युगों में, और ये स्वस्तिक करके ये बिंदी लगाते हैं, है ना, स्वस्तिक करके बिंदी लगाते हैं, चारों में ऐसे बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं ना, और इसको स्वस्तिक कहते हैं। क्यों, आत्मा बिंदी स्वरूप है, चैतन्य है, अविनाशी है, आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। तो इन चारों युगों में मुझ आत्मा बिंदु स्वरूप की स्थिति क्या थी, इसको कहते स्वस्थिति, स्वस्तिका। इन चारों ही युगों में मैं आत्मा मैं स्वयं कौन हूं, देह हूं कि आत्मा, आत्मा हूं जो अविनाशी है। तो चारों ही युगों में आत्मा चलती है, शरीर नहीं चलता। हर जन्म में तो हम अलग अलग शरीर लेते हैं ना, पर आत्मा ट्रैवल करती है, मुझ आत्मा की यात्रा है, जीवन यात्रा। हम चले थे सतयुग से, घर परम धाम से आए, सबसे पहले हम सतयुग में आए, फिर सतयुग में हम 8 जन्म लिए, फिर आए 8 जन्म में अलग अलग शरीर लिए, फिर आए त्रेता में 12 जन्म अलग अलग, फिर शरीर अलग, माँ बाप अलग, सब कुछ, फिर द्वापर में आए, फिर 21 जन्म लिए अलग अलग शरीर, फिर आए हम कलयुग में 42 जन्म लिए। इस तरह हमारी जीवन जो यात्रा है सतयुग से चलकर 5000 साल में घूमते 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 ये कलयुग के अंत में आकर पहुंचे हैं। तो 5000 साल में जन्म कितने हुए, 8, 12, 21 और 42, कितने हुए, कितने हुए, 83, है ना। 5000 साल में हम 83 जन्म लेते हैं, लेकिन बहुत ही दयालु है भगवान, कृपालु है वो। अब ये 83 जन्मों में हमने क्या क्या किया? अभी सतयुग रहता तो अच्छा अच्छा था, द्वापर से लेकर के हमने क्या क्या कर्म किया, क्या क्या फल भोगते आए, हमें पता नहीं। और ये स्वस्तिका की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने शरीर लिया, अपना पार्ट बजाया, कर्म किया और फिर वो छोड़ा, अगला पार्ट लिया, अगला सीन में हम दूसरा शरीर, दूसरा ड्रेस पहना और वहां हम अपना कर्म करते हैं। पर पिछला का क्या हमने ड्रेस पहना था, क्या कर्म किया था, वो हमारे स्मृति से लुप्त हो जाता है, हम भूल जाते हैं। इसीलिए हम ये यात्रा बहुत ही उत्साहपूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 जन्म की याद हमें आ जाए, स्मृति हो, हमने ये किया था, ये हमारे माँ बाप थे, ये हमारे बच्चे थे, ये मेरे पति, ये मेरे पत्नी थी, मेरे को उसने धोखा दिया, इसने मेरा वो किया और वो मेरे बाजू में ही बैठी है, सब हमें याद रह जाता तो हम जीवन जी सकते हैं? एक क्षण भी नहीं, वो भी नहीं भूल सकते। कई ऐसे हैं जो बच्चे अपने अतीत के पूर्व जन्म थोड़े थोड़े उनको याद रह जाता है, कुछ जन्म तक, कुछ समय तक उन बच्चों को याद रहती है कुछ कुछ। ये कलयुग है ना, जबकि वो नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये अनैचुरल चीज है, उनको याद हो जाती है और वो लोग अपने पिछले जन्म के माँ बाप के पास भी वो बच्चे को ले जाते हैं, वो पहचानता भी है बच्चा, ये मेरे पत्नी है, ये चार मेरे जो है वो बच्चे हैं, वो सब पहचानता है वो बच्चा। आप सोचिए उस बच्चे का क्या हाल होगा, अब जो है वर्तमान के माँ बाप छोड़ नहीं पाते हैं और इनके पिछले बच्चे और इनके पत्नी या पति जो भी वो अपनाएंगे नहीं। अब 4 साल का बच्चा, 40 साल का उनके बेटे और 60 साल के पत्नी, अब 4 साल के बच्चे को 60 साल की पत्नी, वो पत्नी एक्सेप्ट करेगी? ये पॉसिबल ही है ना। हमको पिछले का छोड़ना है, लेट गो, लीव, छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, उसको छोड़ो फिर आगे बढ़ो, ये है यात्रा। अगर हम छोड़ते नहीं जाएंगे फिर इतना ही इकट्ठा हो जाएगा, फिर हमारे से चला नहीं जाता। जबकि हम चीजें लेके लेके इधर से भी लो, इधर से भी लो, लेते लेते अब यहाँ आप माउंट आबू आए हैं, अब जाएंगे वापस, आप मान लीजिए लखनऊ जा रहे हैं और यहां से रास्ते में चलते चलते जितने भी स्टेशन आए, बहुत सारे सामान इकट्ठा करते 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 आप चले जाओगे, आप चले ही नहीं जाएंगे, कितना ढोएगा इंसान ना। इसलिए छोड़ना होगा, चीजें ही हम उठा के नहीं जा सकते तो मन में बातें कैसे लेकर के चल सकते हैं? इसलिए बातें भी छोड़ना होगा। अगर हम इस जीवन यात्रा बहुत सुखदायी हो, आरामदायक हो, तो बातों को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। कल जो भी बात हो गई, आज सवेरे नया दिन, अब कल की बात छोड़ दो, रात को ही छोड़ दो, सोने से पहले आज सवेरे से अब तक जो भी बात हुई अब छोड़ दो। देखो जीवन में अर्पण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हैं जी। हम भोजन स्वीकार करते, भोजन करने के पहले भगवान को अर्पण करते हैं, करते हैं कि नहीं करते, कौन कौन करता है? भोजन करने के पहले भगवान को अर्पण करके खाते हैं हम, हर त्योहार में पहले हम भगवान को अर्पण करके फिर स्वीकार करते हैं, बल्कि हर रोज हर चीज जब भी लेते हैं। यहां पर ये बहुत अच्छा नियम बाबा ने बनाया, इवन पानी भी पिएंगे ना बाबा को याद करके पियो, खाना खाएंगे बाबा को, केला खा रहे हो बाबा को याद करके खाओ, क्योंकि बाबा है ना, पिता है वो, हमारे हमारे साथी हैं, रक्षक है वो। हर चीज जब हम स्वीकार करते हैं बाबा को अर्पण करके खाने से, उसकी नेगेटिव, इसके जो अनर्थ होना होता है ना, वो टल जाता है, वो अमृत बन जाता है। तो अर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम भोजन हर चीज अर्पण करते हैं, इवन मुझे याद है बचपन में मैंने देखा है घर में हर महीना जो राशन आता है ना घर में, चावल के बोरे, गेहूं जो भी, वो भी जैसे आए उसे थोड़ा थोड़ा चावल गेहूं वगैरह लेकर के पूजा के घर में रखते हैं। नया कपड़ा आते हैं, सोना ले आते हैं, ऐसा नहीं आया पहन लिया, नहीं, वहां पर रख करके फिर पहनते हैं। आपके घर में भी होता होगा, हां जी, कम से कम त्योहार के दिन में तो होता ही है, पर ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि गेहूं भी चावल भी जो भी आता पहले वहां रखते हैं। जैसे ये चीजें हम अर्पण करते हैं, इसी तरह सोने के पहले दिन भर की जो भी बातें हुई हो वो अर्पण कर दो, बाबा को अच्छी भी बातें दे दो, खराब बातें तो देनी ही देनी है ना, तब अगला दिन हमारे लिए नया होगा। हां जी, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। कभी भी ऐसा ना सोचो कि फिर वही दिन, फिर रात पूरी हुई, फिर दिन आ गया, फिर वही बातें, फिर वही चेहरे, फिर वही सब कुछ, नहीं, वही वही सोचोगे तो वही वही एहसास होगा, वही वही कर्म करेंगे, वही वही बनता चला जाएगा, प्रारब्ध भी वही वही होगा। अगर हम भिन्न सोचेंगे भिन्न करेंगे, भिन्न करेंगे प्रारब्ध भी हमें भिन्न मिलेगा। इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग डिफरेंट, डू डिफरेंट, एंड इफ यू हैव टू डू डिफरेंट, थिंक डिफरेंट। वही वही नहीं सोचो, बासी ना सोचे, कितनी भी अच्छी चीज हो चार दिन पुराने वाला खाएंगे थोड़े, बासी है ना। जब चार दिन पहले वाली चीज कितनी भी स्वादिष्ट हो हम खाते नहीं हैं, तो चार दिन पहले वाली बात फिर सोचते क्यों। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हे अर्जुन, जो हो गया जो बीता सो अच्छा, जो हो रहा सो अच्छा कि बुरा, थोड़ा अच्छा कि बहुत अच्छा, और जो होगा, जो हो गया सो अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा। क्यों? कलयुग के अंत फिर आएंगे समय पर, कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदि। अब देखो ये दिन और रात भी तो चक्र ही है ना। आज कौन सा वार है, कौन सा दिन है? मंडे। मंडे की ट्यूसडे, मंडे, वेरी गुड। कल क्या था? संडे था, रविवार। आज सोमवार, फिर मंगल बुध, यू नो, फिर आएगा संडे, फिर मंडे। चक्र है ना, साल भी चक्र है। इसी तरह ये कलयुग के अंत, और फिर कलयुग के बाद फिर क्या आएगा? कलयुग के बाद सतयुग। अब जो समय चल रहा, ये घड़ी तो हम सब पहनते हैं, पर ये घड़ी हम यहां पहनना है। हां जी, अब समय क्या है? व्हाट इज द टाइम नाउ? अब समय क्या है? अब कलयुग का अंत और सतयुग आदि, जिसको कहते संगम। लोग संगम में नहाते हैं ना, उसको पुण्य मानते हैं। कई जन्मों के जो पाप है नष्ट हो जाते हैं संगम में, त्रिवेणी संगम में नहाने से। पर वो संगम तो शरीर डुबकी लगाता है, पर इस संगम में आत्मा डुबकी लगाती है। ये है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, इसको कहते अमृत वेला। क्योंकि परमात्मा शिव बाबा कल्याणकारी है, शिव माना कल्याणकारी। हर बच्चे को एक मौका अवश्य देगा। हम द्वापर से लेकर के, जो भी सतयुग से लेकर के हम अपना कर्म करते आए हैं, कलयुग द्वापर कलयुग में तो बहुत ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। अब द्वापर कलयुग की बात छोड़िए, इसी जन्म में हमने जाने अनजाने भी ऐसे कई कर्म किए ना, किए कि नहीं किए? तो बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, इस संगम युग में आप मुझे याद करो, मेरे मत पर चलो। इसलिए इसको श्रीमत कहते हैं। भगवान जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते को, उस मत को श्रीमत कहते हैं। इसलिए ही भगवद गीता को श्रीमद भगवद गीता कहते हैं। क्यों? उसमें भगवान के मत है, क्या करना क्या नहीं करना, इस रास्ते पे चलने से कहां जाओगे, इस मार्ग पर चलने से कहां जाओगे, ये मार्ग बताया गया है, मत बताया गया है। और ये भगवान मत है, इसलिए इसको श्री मत कहते हैं। बाकी कोई भी इंसान का दिया हुआ मत श्रीमत नहीं है। श्रीमद भगवद गीता अर्थात ईश्वर के बताए हुए मार्ग, इस मार्ग पर चलने से कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण है। हमारे लिए अकल्याण का कोई गुंजाइश ही नहीं। सबसे पहले हम ये दिल से ये माने, महसूस करें, मैं उस परमात्मा की संतान हूं, बच्चा हूं मैं। जब मेरा पिता शिव बाबा है, कल्याणकारी हैं, कल्याणकारी के बच्चे को अकल्याण हो सकता? हो सकता? इसलिए मेरे लिए हर दिन हर घड़ी अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं जहां पांव रखूं वही बेहतर घड़ी है। अब ये मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं, मेरा जन्म ही अत्यंत, जब से मैंने बाबा को पहचाना, बाबा का बच्चा बना, मेरे सारे मुहूर्त दिशाएं बदल गई। अच्छा ही अच्छा है, ठीक है? बाबा के बच्चों के लिए, ईश्वर के बच्चों के लिए, सर्वशक्तिवान के बच्चों के लिए अशुभ हो ही नहीं सकता। क्यों? कि अब का जो समय है वो कल्याणकारी संगम युग है। इस युग में आत्मा, पुरुष अर्थात आत्मा, आत्मा को पुरुष कहते हैं, पुरुष उत्तम बनने का यह समय है। इस समय में हर कर्म करने में ईश्वर साथी होगा, भगवान हमारा हाथ पकड़ करके चलाएगा, कर्म करने की ताकत देंगे। पर अगर हम ये स्मृति स्वस्तिक माना स्व की स्थिति, स्थिति माना स्मृति, हम ये याद रखें कि हम ईश्वर के बच्चे हैं और हमें ऐसा कर्म करना चाहिए, ये अगर हम स्मृति से करें हमारी स्थिति उत्तम से उत्तम बन जाएंगी। पुरुष आत्मा की जो स्थिति है उत्तम बन जाएंगे। इससे हम कलयुगी स्थिति से आसुरी गुणों से हम देवत्व के ओर अर्थात सत्युग के ओर हम चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं ऐसा करनी करे जो नर नारायण बने, ऐसा करनी करे जो नारी लक्ष्मी बने। साधारण कर्म से कर्म भी, कर्म का बीज क्या है? सोच, स्मृति। उस स्मृति से मैं बाबा का बच्चा हूं, परमात्मा की संतान हूं, उस स्मृति से हम जो कर्म करते हैं उसमें कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा का बच्चा समझ करके हम हर बोल जो बोलते हैं उसमें आशीर्वाद समाया हुआ होगा, आपके बोल में ताकत होगी। देखो आजकल बच्चे भी जो है ना, छोटे छोटे बच्चे भी क्या 18 अध्याय ऐसा बोलेंगे आप तो चकित रह जाओगे। उसको बोलना भी ढंग से ठीक से नहीं आता है बच्चे को, पर ऐसा क्योंकि पिछले का संस्कार लेके आए ना बच्चा, पर वो बोल रहा है, वो बोलने से प्रभावित होंगे पर बोल में शक्ति नहीं होंगी क्योंकि बच्चा नादान है। अगर हम बाबा की याद में बोल बोलेंगे, बाबा की याद में कर्म करेंगे तो उसमें ताकत है, कल्याण है, हमारे भी अन्य के भी। इसको कहते कर्म योग। बाबा कभी ये नहीं कहता कर्म छोड़ो, ना ना ना, कर्म तो करना ही है ना। अब हम मठ में भी बैठे हैं, आश्रम में भी बैठे हैं, कर्म तो कर रहे हैं ना, वे उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी तो कर्म ही है ना। तो हर कर्म करते हमारी स्थिति स्मृति क्या है उस पर निर्भर करता है आत्मा उत्तम की ओर चल रही है या कनिष्ठ की ओर। अब इस सृष्टि चक्र को ड्रामा क्यों कहते हैं? लोग कहते हैं दुनिया नाटक है, 4 दिन का नाटक है, सब बोलते ना 3 दिन का या 4 दिन का, कोई कहते 4 दिन का, कोई कहते 3 दिन का, आज कल और आज, अरे आज कल और कल, अतीत कल, आज और कल, दुनिया इतनी है, ऐसे बोलते हैं ना, 3 दिन का खेल है। अभी व्यक्ति शरीर भी छोड़ता है जिसको मृत्यु कहते हैं, कल जिंदा था आज शरीर छोड़ा, कल खत्म है जी, कल फिर उस अस्थियां निकाल करके बहा दिया जाता, हो गया, ओम शांति। तो यस्टरडे टुडे टुमारो, ये कल आज और कल 3 दिन में, ऐसे कहते हैं। कोई लोग 4 दिन का नाटक कहते हैं। सबसे पहली बात इसमें सीख क्या है? नंबर वन, कोई भी ड्रामा देखते हैं, अभी आप में से भी तो ड्रामा वगैरह तो देखते होंगे ना कभी कभी, क्यों देखते हैं? फिल्म देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं? कुछ भी देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, जो भी देखते हैं, क्या क्यों देखते हैं? सॉरी, मन, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट किस लिए चाहिए? एंटरटेनमेंट किस लिए चाहिए? एंटरटेनमेंट से, एंटरटेनमेंट से खुशी मिलती है, चाहे वो अल्पकाल का हो, 3 घंटे की खुशी हो, हाँ जी। कोई हंसाने वाले देखते हैं, 3 घंटा तो हंस लेंगे, अर्थात 3 घंटे के लिए हम अतीत को भूलने के लिए एक ये साधन है।
हां जी,
अर्थात अभी ड्रामा माना एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट माना खुशी, इसका मतलब ये ड्रामा माना खुशी, खुशी के लिए बना है ना ड्रामा, रोने के लिए तुम। कुछ लोग ड्रामा देखने जाते हैं, पैसे देते, टिकट लेते, बैठते हैं, रो के वो बेहाल होके आते हैं, वहां रोएंगे यहां रोएंगे, वहां वो लोग डुशुम डुशुम फाइटिंग करेंगे, इनको कहता और मारो और मारो और मारो, अरे इसको मार उसको मार, इतना उसमें लिप्त हो जाते हैं जैसे उन्हीं के साथ सब कुछ हो रहा हो। इसलिए पैसा देकर वहां जो भी दुख सुख मारा मारी जो भी हो रहा होगा वो हम अपने साथ भावनाओं में समेट कर घर ले जाते हैं, है ना। तो ये 3 घंटे का, जबकि हमें पता वो रियल में मार नहीं रहा, वो रियल में उस व्यक्ति का मौत नहीं हुआ, इसमें कुछ सच्चा नहीं है, तो ड्रामा है ना, कुछ भी सच्चा नहीं है, कितने भी मारो और वो मरता थोड़ी है, अगली फिल्म में फिर वो नाटक करेगा। ये क्या, सबसे पहली बात, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यात्रा, जीवन की यात्रा करने वाली आत्मा है, शरीर नहीं। कितना भी मारो करो करो, ये इसकी मृत्यु नहीं होगी, फिर वो खड़े हो जाएंगे, फिर अगला नाटक अगला नाटक अगला नाटक करते चले जाएंगे। सबसे पहले नाटक आत्मा करती है। दूसरी बात, नाटक क्यों करती है, खुशी के लिए। जब इसको नाटक कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, ड्रामा इज फॉर जॉय, ड्रामा खुशी के लिए है। हम ऊपर से इस संसार में रोने धोने कष्ट भोगने नहीं आए, एंजॉय करने आए, खुशी के लिए आए, ड्रामा है ना। अगर इसमें हम लिप्त हो गए तो आप दुखी होंगे, लिप्त नहीं हुए हम एंजॉय करेंगे। इसीलिए इस संसार में एक बैलेंस आवश्यक है, और बैलेंस का दूसरा नाम है डिटैचमेंट, न्यारा होना। देखिए हम टीवी देखते हैं, स्क्रीन वहां है, हम यहां आरामदायक कुर्सी में बैठकर उसको हम देखते हैं तो मजा ले रहे हैं, हैं जी। अभी टीवी स्क्रीन यहां है और मैं इसके एकदम सामने मुंह टच हो, ऐसा बैठ के देखेंगे तो दिखाई देगा, कितना भी अच्छा हो एक डिस्टेंस रखना आवश्यक है ना, एक निर्दिष्ट दूरी रखना आवश्यक है। तो इस संसार में भी ड्रामा में संबंध है, लोग हैं, अपने हैं, पराये हैं, बातें हैं, घटनाएं हैं, जितने भी इस ड्रामा के संबंधित हो रही हो उससे एक निश्चित दूरी रखना अति आवश्यक है। हर संबंध में एक निश्चित दूरी अति आवश्यक है। जैसे सड़क में गाड़ियां जाती है ना, हैं जी, गाड़ियों के पीछे, हर गाड़ी के लगभग हर गाड़ी के पीछे लिखा हुआ होता है, 2 बातें लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है, एक है कीप डिस्टेंस, दूसरा हाँ हॉर्न। अगर वो डिस्टेंस कीप नहीं करेंगे तो क्या होगा, टक्कर होगा ना। यहां पर भी हर संबंध, कितने भी नजदीक संबंध हो, प्लीज एक डिस्टेंस रखना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति के संबंध में थोड़ा स्पेस देना अति आवश्यक है, बिकॉज इट इज इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्ति के उस इंडिविजुअल अस्तित्व व्यक्ति को हमें थोड़ा स्थान देना होगा, उनको श्वास लेने के लिए फ्रीडम देना होगा। हम वो देते ही नहीं है, हमको लगता है हमने शादी की है तो आपके श्वासों पर भी हमारा अधिकार है, हम आप हमको पूछ करके श्वास ले, इधर देखना है तो हम बताएं आप उधर क्या देख रहे हो, क्यों देखा? अरे इतना तक आप पकड़ के रखोगे बेचारा मर नहीं जाएंगे? हाँ जी, अरे छोड़ो भैया छोड़ो, जो हमारे हक के हैं, जो हमारे भाग्य के, हमें छोड़ के कभी नहीं जाएगा। जिनको जाना है वो तो चले ही जाएंगे, कितना बांध के रखोगे? अगर मुझ में सच्चाई है, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं, मेरे पुण्य का फल जाए मर्जी चाहे दुनिया भर के लोग आकर के उसको लेने की कोशिश करें, छीन नहीं सकते, क्योंकि मैंने कब अपने कर्मों से अर्जित किया हुआ ये फल है, भाग्य है। इसलिए अपने भाग्य पर विश्वास होना अति आवश्यक है। इसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद पर यकीन हो, मेरा नहीं हो सकता, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, खुद के कल्याण पर उनको विश्वास नहीं है, खुद के भाग्य पर विश्वास नहीं है, वो दूसरों को क्या रास्ता दिखाएगा? दूसरों को अच्छी बातें कैसे कह सकते हैं? अच्छी बातें बोलना बड़ा सरल है, पर उस पर यकीन होना बहुत ही आवश्यक है। आपको पता है दुनिया में जितने भी तनाव हम देख रहे हैं ना, इसमें बहुत करके, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, 80% से 90% तक जो तनाव है वो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट न होने का कारण है। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम चीजें लाके दे और वो करे ये करे। प्यार का दूसरा नाम है इज्जत, रिस्पेक्ट। प्यार का दूसरा नाम है विश्वास। अगर मैं कहूँ मैं बहुत प्यार करती हूँ पर मैं विश्वास नहीं आपके ऊपर, मैं बहुत प्यार करती हूँ पर इज्जत ही नहीं देते, रिस्पेक्ट ही नहीं, उसको प्यार थोड़ी कहेंगे। प्यार माना रिस्पेक्ट है हर हाल में। अगर वो नहीं है तो प्यार नहीं है। तो खुद को भी तो रिस्पेक्ट चाहिए ना, हम अपने आप को भी रिस्पेक्ट करें, अपने आप पर विश्वास करें, तो मैं अपने आप से प्यार कर सकती हूँ। अपने आप से रिस्पेक्ट है, अपने आप से विश्वास है, तो मैं दूसरे ऊपर विश्वास और रिस्पेक्ट कर सकती हूँ। नहीं तो मांगना पड़ता है, हमें प्यार मिले, हमें रिस्पेक्ट मिले, हैं जी, हम आए तो लोग सल्यूट मारे, हम बोले तो लोग तालियां बजाएं, हमारे प्रोत्साहन करें। ये दे दे मांग मांग के मांग मांग करके हम भिखारी बन गए। बहुत अपेक्षा रखते हैं हम लोग उनसे, बहुत अपेक्षा रखते हैं, और जब वो अपेक्षा अनुसार हमें प्राप्त नहीं होता फिर हमें बहुत मन को अच्छा नहीं लगता। अपेक्षा वो इसलिए हम रखते हैं क्योंकि बहुत करके जो है अपने प्रति जो विश्वास और रिस्पेक्ट होना चाहिए वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सो नंबर वन कि हमें जो है ये ड्रामा, ये संसार में हम आए हैं आराम से खुशी खुशी जीने, ऊपर से हम रोने नहीं आए। और खुशी खुशी तब हम रह सकते हैं जब एक डिस्टेंस रख करके हम ड्रामा को देखेंगे, एक डिस्टेंस रख करके हम ड्रामा करेंगे। अब दूसरी बात बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बात, जब हम ड्रामा करते हैं वो सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा में दो चीजें हैं, एक है रोल, एक है रियल। मान लीजिए मैं आपको कहूं आपको यहां पर 10 मिनट के लिए राजा विक्रमादित्य जैसा आपको नाटक करना है, तो आप क्या करोगे? झांसी रानी की तरह आपको यहां पर ड्रामा करना है, क्या करोगे सबसे पहले? विक्रमादित्य जैसे आपको यहां पर एक्ट करके दिखाना है, सबसे पहले क्या करेंगे? विक्रमादित्य जैसे ड्रेस पहनेंगे, वेरी गुड. दूसरा, उनकी तरह बोलेंगे, डायलॉग बोलेंगे, और फिर उनकी तरह एक्सप्रेशन, जो भी वो विक्रमादित्य करते हैं, करते थे, वैसा हम यहां करेंगे. ठीक है? तो विक्रमादित्य कौन थे? कौन थे जी? राजा थे. तो आप 10 मिनट के लिए क्या होंगे स्टेज पर? विक्रमादित्य राजा होंगे. ठीक है ना? 10 मिनट के पश्चात क्या होगा? 10 मिनट के बाद क्या करेंगे आप? सबसे पहले कॉस्ट्यूम निकालेंगे. दूसरी बात, आप जो सुरेश है, रमेश है, सुनीता है, आप अपने वास्तविकता में आ जाएंगे. हाँ जी, आप अपना नॉर्मल कर्म करना शुरू करेंगे. मान लीजिए अभी यहां आधा घंटा तक आपने विक्रमादित्य का पाठ किया, घर में भी जाकर के आप करो, मैं राजा विक्रमादित्य आया हूं, चलो दासी आ जाओ. लोग कहेंगे क्या हो गया, पेश किया जाए. इस तरह से हम बोलना शुरू करेंगे और हम घर जाकर के भी विक्रमादित्य ही बने रहेंगे, तो लोग सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे आपको. क्योंकि वो रोल था, रोल के बाद हमें रियलिटी में आना है. रोल रियल नहीं होगा. सबसे पहले वेश को बदलते हैं, बोल बदलते हैं, वास्तविकता में आते हैं, तब ही हम एंजॉय करेंगे. और रोल करते समय ऐसे करेंगे जैसे सचमुच राजा विक्रमादित्य ही बोल रहा हो. हैं जी? इसी तरह बाबा कहते हैं ये दुनिया भी एक रंगमंच है. जैसे हर आत्मा ओरिजिनल कौन है? आत्मा एक्टर है. और आत्मा इस संसार में माता, पिता, भाई, बंधु, बच्चा, पति, पत्नी, जो भी है, वो एक रोल है, रियल नहीं है. अगर हम रोल में फंस जाएंगे तो फिर भैया दुखी होंगे. घर में जाकर के आप राजा की तरह आप बिहेव करोगे तो दुखी तो होंगे ना. मैं माता एक रोल है मेरा, पिता एक रोल है, एक बिजनेसमैन, एक टीचर, एक डॉक्टर, ये रोल है मेरा. रियल में क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप शिव बाबा का बच्चा, बस. मैं आत्मा ये रोल कर रही हूं. ये है स्मृति. इसमें बड़ा आनंद आएगा और अच्छा, बेहतर पिता बनेंगे, बेहतर माता बनेंगे, बेहतर टीचर बन सकते हैं. अगर रोल को ही रियल समझेंगे, हर बात में दुख लिख के रखिए. आज मैं मां हूं ना, अरे मां हूं रियल में थोड़ी है. बचपन से तो मां नहीं बने थे, अब 20 साल से मां बनी हूं. आप नहीं समझते ये दुख, तो आप नहीं समझ रहे तभी तो दुखी है. अगर हम ये सच्चाई समझते हैं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ बजा रही हूं, मेरा पाठ खत्म हुआ, मैं निकला, आपका पाठ खत्म हुआ, आप निकले, ड्रामा ही तो है. अपने कर्म अनुसार हम माता पिता बच्चे बने हुए हैं. कर्म का बंधन पूरा हुआ, कहां आप कहां हम, खत्म. ये सच्चाई, ये है सच्चाई, सत्य ज्ञान. अगर ये सत्यता को याद नहीं रखेंगे, इसी देह में और देह के, ये देह ड्रेस है ना, विक्रमादित्य सबसे पहला ड्रेस पहनता है, तो आत्मा सबसे पहले ये अपने अपने पार्ट अनुसार ये ड्रेस पहनती है और यहां अपना अपना कर्म अनुसार कर्म करना शुरू कर देती है. ये ड्रेस को ही सच समझेंगे, ये कर्म को ही सच समझेंगे तो दुखी. पार्ट बजाना भी कर्म ही है, लेकिन उसको हम पार्ट समझते हैं तो बेहतर बजा सकते हैं. द बेस्ट, आई शुड गिव द बेस्ट. इसी तरह इस संसार के नाटक में भी माता हो, पिता हो, बच्चा हो, जो भी हम कर रहे हैं इसको हम पार्ट समझेंगे, यू विल बी एबल टू गिव द बेस्ट। अगर इसी को रियल समझेंगे, आपकी जो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएंगे, लाइफ बिकम्स वेरी मोनोटोनस। आप में से सच बताइए, बेशक आपको हाथ उठाने का मन ना करे, ना उठाएं, पर आपको पता होना चाहिए, जीवन में बोर बहुत लगता है, थक गए हम, है ना? मुझे मालूम है लगभग हम सबको है। क्यों बोरिंग? क्यों? वही 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 वही, फिर उठो, फिर सवेरे हो गया, फिर उठो, फिर भाई पराठा बनाओ, फिर वही बच्चे, फिर वही कच्चे, फिर वही चेहरा, फिर दोपहर फिर खाना बनाओ, फिर वही, फिर बर्तन धो, फिर घर की सफाई करो, फिर आएंगे पतिदेव, फिर बच्चे आएंगे, फिर पत्नी, फिर वही, फिर कमाने जाओ, फिर वही चेहरा, फिर रात को फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर वही। अरे भाई बहुत हो गया, भगवान इससे मुक्त करो। बनाया किसने? भगवान ने तो नहीं बनाया। ये बंधन बन जाएगा अगर हम इसको सच समझेंगे, वो आपके लिए बॉन्डेज बनेगा, बंधन बनेगा। आप इसको एक ड्रामा समझ करके द बेस्ट हमें देना है। आज हम द बेस्ट क्या देंगे? मैं एक एक्टर हूं, अभिनय कर रहा हूं, इस अभिनय में हमारे जो टैलेंट है, एबिलिटीज है, स्किल्स है, मुझे वो दिखाना है। द बेस्ट मदर, द बेस्ट फादर, जिस जो भी फील्ड में है हम, द बेस्ट हमें देना है। यू विल एंजॉय, आपके सारे जो रचनात्मकता है आत्मा में छिपी हुई, बाहर निकल के उभर के आएंगे। हर दिन नया लगेगा, मजा आएगा। और कोई भी कुछ कर रहा है, तीसरा लॉ, तीसरी बात ध्यान से सुनेंगे। तीसरी बात, मैं भी एक्टर हूं, ये ड्रामा स्टेज है, मैं भी एक्टर हूं, आप भी एक्टर है, ठीक है ना? मान लीजिए आप यहां विक्रमादित्य का रोल कर रहे हैं, आप राजा विक्रमादित्य है। कौन है आप? राजा विक्रमादित्य का पार्ट यहां बजा रहे हैं, ठीक है ना? और मेरे को बताया गया, भाई आपको एक डांसर है, आपको यहां डांस करना है। मैं क्या करूंगी स्टेज पर? मेरा रोल क्या है, मेरा अभिनय क्या है? मुझे यहां नृत्य करना है। तो मैं नृत्य करूंगी कि मैं भी राजा बन जाऊंगी? अरे मैं कोई कम हूं क्या? ये राजा बने और मैं नृत्य बनूं? नहीं। या वो राजा कहे मैं भी तो नृत्य कर सकता हूं, मैं भी कोई कम है क्या? तो अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर करना शुरू करेंगे, यह सारा खिचड़ी पकेगा, कोई ढंग से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। आप सोचो, या 10 एक्टर्स है, 10 लोगों को 10 काम अभिनय करने को दिया गया है, वो अपना अपना करेगा कि दूसरे को देखेगा? अगर सारे एक दूसरे को देखने लगे, कोई भी एक्टर अपना कार्य ठीक से कर पाएगा, अपना अभिनय ठीक से कर पाएगा? यही हो रहा है। हम अपने स्टेप्स को देखने के बदले, अपने कर्म को देखने के बदले, हम दूसरों को ज्यादा देख रहे हैं। ये क्या करता है, ये क्यों कर रहा है, इसको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय में, इस दौरान मुझे क्या करना, वो तो मैं भूल गई हूं, क्योंकि मैं जो करना है वो भूल करके मैं आपको देख रही हूं कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए हम सब गलत गलत स्टेप्स डाल रहे हैं। इस ड्रामा में हम सभी गलत अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को देख रहे हैं। और बाबा कहते हैं ये है देह अभिमान का जड़। हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। किसी को भी एक ज्ञान देने हम जाते हैं ना, मान लीजिए हम स्कूल में गए ज्ञान देने, टीचर्स कहते हैं सबसे पहले बच्चों को देना चाहिए, बच्चे सुधरे तो देश सुधरे। और बच्चे कहते हैं अरे सबसे पहले हमारे माता पिता को दो, हर रोज लड़ते रहते हैं, वो सुधरे तो हम सुधरे। और वो कहते भाई आप फला हमारे जो काम नौकरी जहां धंधा नौकरी करते उनको ज्ञान दो, वो सुधरे तो हम न लड़े। वो कहते जो गवर्नमेंट है वो सुधरे तो हम, तो सुधरेंगे कौन? क्योंकि कोई ये नहीं कहता है कि मुझे सुधरना है, मैं सुधरूंगी तो दुनिया सुधरेगा, मेरे मन में शांति है तो दुनिया में शांति है, ये कोई नहीं सोचता। इसलिए ये स्वस्तिका स्व की स्थिति के आधार पर पूरी सृष्टि आधारित है। मैं क्या सोचती, मेरी क्या स्थिति है, पूरी सृष्टि की स्थिति है। इसलिए सृष्टि चक्र कहा गया है। इस सृष्टि चक्र को कल्प कहते हैं, जैसे 7 दिन के लिए हफ्ता कहते हैं, 30 दिन को महीना कहते हैं, 12 महीना को साल कहते हैं, ऐसे 4 युग को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प 5000 साल का ये जो सृष्टि है वो चक्र है। इस सृष्टि चक्र को एक कल्प माना 5000 साल, 4 युग तो इसको, क्योंकि ये पूरा कल्प पूरी सृष्टि हमारे संकल्प से बनता है। संकल्प से बना हुआ ये कल्प है, हमारी वृत्ति से बनी हुई ये सृष्टि है। इसलिए कहते जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी दृष्टि वृत्ति से आधारित ये सृष्टि है और हमारे संकल्प से पूरा कल्प बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें अपने मन, हमारे मन अर्थात हमारे सोच, हमारे संकल्प, हमारे मनोवृत्तियां, हमारी दृष्टि अगर पवित्र है, शुद्ध है, तो सारी सृष्टि स्वर्ग है। अगर हम अपनी मन वृत्ति दृष्टि को बदलेंगे तो आत्मा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। और सृष्टि, हमारी सृष्टि को बदलना है, वृत्ति को बदलना है, हमारी दृष्टि को बदलना है, शक्ति की आवश्यकता है और वो है बाबा की याद में। इसलिए कर्म करते उठते बैठते हमें बाबा को अपने पिता समझकर याद करना है, अपने आप को उनका पुत्र, उनके बच्चे समझकर, संतान समझकर, बाबा को हम अपना रक्षक समझकर, बाबा को हमारा दोस्त समझकर ऐसा महसूस करें जैसे वो मेरे साथ साथ है, बड़ा आनंद आएगा। इसको कहते हैं कर्म, कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, कुछ छोड़ के जाने की आवश्यकता है, घर में रहे अपना अपना कर्म करे, पर साथ ही मेरा कौन है, मेरे मन में सत्संग कहते हैं। सत्संग क्या है? प्रवचन सुनना कोई सत्संग नहीं है। सत्संग वो है जहां सत्य के स्मृति में व्यक्ति चिंतन करता है, वो सत्संग है। ये शरीर सत्य है कि झूठ है? शरीर सत्य है झूठ है? जी झूठ है, हाँ जी। पर अगर मैं शरीर के स्मृति से कर्म करूंगी तो संग तो झूठा हो गया ना। एक दूसरे को शरीर के रूप में देखती हूँ, अपने आप को भी शरीर के, मैं स्त्री हूँ, आप पुरुष है, मैं बड़ा हूँ, छोटा है, मैं अमीर हूँ, गरीब है, मैं गोरा हूँ, इसी यही स्मृति से हम कितने भी अच्छी अच्छी बातें कर ले वो सत्संग नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी स्मृतियां झूठ है। जब ये शरीर झूठ है, झूठ अर्थात पूरा झूठ नहीं है, अधूरा सत्य है, अब है कल नहीं है, हाँ जी, कल नहीं था अब है, बस फिलहाल है, हाँ जी। अब ये शरीर के संबंधित दुनिया है, वो सच है झूठ है? सत्संग माना मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये स्मृति आत्मा सत्य है अविनाशी, शिव बाबा परमात्मा सत्य अविनाशी है, इस स्मृति में रहने वाला ही सत्संगी है। बाकी और स्मृति यदि आएगी तो उसको सत्संग नहीं कहेंगे. ट्रूथ बेस्ड ऑन ये कॉन्शियसनेस की बात है ना. इसलिए सबसे पहली बात, इस ड्रामा में जो भी है, हम बाबा के बच्चे होने के कारण कल्याण है. दूसरी बात, इस ड्रामे में मुझे अपना कर्म करना है, मुझे दूसरों का कर्म नहीं करना है, देखना है. तीसरी बात, मुझे अपना कर्म द बेस्ट करना है. दूसरा क्या कर रहा है वो उसका कर्म, मुझे दूसरों की स्टोरी में नहीं जाना, मुझे अपनी स्टोरी द बेस्ट लिखना है, अपनी स्टोरी द बेस्ट एक्ट करना है. ओके. और चौथी बात, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, स्मृति में रहना है. इसमें सब खुशी खुशी, सब में कल्याण. तो हर घड़ी हमारा द बेस्ट मुहूर्त होगा, जहां हम कदम रखेंगे कल्याण ही कल्याण. हाँ, हम सभी बाबा के बच्चे हैं ना, शिव बाबा के बच्चे हैं ना, परमात्मा के बच्चे हैं ना. कौन कौन परमात्मा के बच्चे हैं? तो जब हमने दिल से माना, बाबा मैं आपका बच्चा हूं, आपकी संतान हूं, तो हमारे लिए आज के बाद सब कल्याण रहेगा. आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा. ओम शांति. अभी हम आराम से बैठेंगे. हाथ में कुछ पकड़े ना, सब छोड़ दो, क्योंकि छोड़ के सब जाना है. कुछ हाथ में नहीं पकड़े, आराम से बैठे, सब बाजू में रख दे. आप फोन भी जो है, कुछ हाथ में कुछ पकड़ो नहीं, सब रख दो. आराम से बैठो, लंबा श्वास ले, रिलैक्स होके बैठे. और सबसे महत्वपूर्ण, आंखें खोल कर बैठे. अपने विचारों को मस्तिष्क के बीच में, ब्रकटि के बीच एकाग्र करें. ब्रकटि के बीच बहुत ही पवित्र स्थान है, जहां मैं आत्मा निवास करती हूं. मैं आत्मा अर्थात आध्यात्मिक शक्ति. पंचभूतों से बना हुआ इस देह से अतीत, एक शुद्ध ऊर्जा जो कि चैतन्य है, अविनाशी है, अमर है, ये मैं हूं. अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, एक बिंदु, एक लाइट हूं. जैसे एक सितारा चमकता हुआ, मैं एक चैतन्य सितारा हूं चमकता हुआ. स्वरूप हूँ। यही मेरा अस्तित्व है। कभी न मिटने वाला, कभी परिवर्तित न होने वाला, ये मेरी आइडेंटिटी है। अविनाशी अस्तित्व है ये मेरा। मैं आत्मा, चमकता हुआ चैतन्य सितारा, अपने मन की आंखों से देखे अपना ही ये सुंदर रूप को। प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा, शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा, परम धाम निवासी हूँ। इस संसार से बाहर सूर्य चांद से भी बाहर निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, ये मेरा घर है। सर्वत्र जहां शांति हो ये मेरा अविनाशी घर है। अपने घर में मैं आत्मा, बहुत शांत और रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। इस घर से मैं आत्मा अपना पार्ट बजाने, इस संसार रूपी रंगमंच पर अपने कर्म अनुसार, संस्कार अनुसार अपना पार्ट अदा करने आई हूँ। जैसे मेरा कर्म, मेरा संस्कार उस अनुसार इस शरीर रूपी वस्त्र पहनकर इस विशाल रंगमंच पर अपना अभिनय कर रही हूँ। करने वाली मैं आत्मा हूँ। इस संसार में हर मानव अपना अपना पार्ट अदा कर रहा है। और मैं अपना कर रही हूँ। इसलिए मेरा सोच, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति में अभिनय करने वाला हर मनुष्य के प्रति सम्मान और प्यार खुद के प्रति भी सम्मान और प्यार है। क्यों कि मात्र अभिनय है, जैसा ही मेरा पूर्ण हो जाएगा ये शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ मुझे अपना घर वापस जाना है। शांति धाम, जहां मेरा पिता परम आत्मा शिव बाबा भी है, बाबा ओ मीठे बाबा, मैं कितना ना भाग्यवान हूं जो आपने मुझे मेरा पहचान दिया। आपका पहचान दिया, आप मेरे परम पिता हैं, माता भी, सबसे प्यारा दोस्त, मेरे रक्षक, मेरा प्रियतम, आप मेरे सर्वस्व हो बाबा। हर कर्म करते आपका साथ का अनुभव करूंगी, आपके असीम शुद्ध बेहद रूहानी प्यार से अपने अंतरात्मा को संतुष्ट करूंगी। अलौकिक प्यार सिर्फ आपसे प्राप्त होता है। जिससे मुझे आत्मा के जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। जन्म जन्मांतर के दुख दर्द से मुक्ति पा सकती हूँ। क्योंकि आप प्यार के समुंदर है, शांति के सागर, आपको पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। मेरा जीवन सार्थक हो गया बाबा। इसी आनंद और खुशी में हम इस संसार के हर कर्म को करेंगे, अपना अभिनय बेहतरीन बनाएंगे। ओम शांति।